SBS हिंदी।
फेडरल सरकार ने राज्य और टेरिटरी ट्रेजर से मिलकर एक मीटिंग की है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की तेजी से बढ़ती जनसंख्या की समस्या को निपटा जाए। अब ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और कई सवाल भी हैं, तो इसी पर सुनील अवस्थी की एक रिपोर्ट। ये तो सभी मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इस समय हर साल यहाँ आने वाले प्रवासियों की संख्या पर 190,000 की सीमा तय है। हालिया वर्षों में चाहे ये 160,000 तक ही पहुँची है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया पांचवां वो देश है जहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यूं OECD के सदस्य सामान्यतः सभी अमीर देश हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 25 मिलियन तक आशातीत समय से पहले ही पहुंच रही है। अब इस जनसंख्या की बढ़ोतरी पर क्या किया जा सकता है, इसी सवाल पर कैनबरा में मीटिंग हुई और फेडरल ट्रेजर जॉश फ्राइडनबर्ग ने इस मीटिंग को सफल बताया।
Out of today's very constructive discussion, we agreed to set up two working groups to begin work immediately. Those working groups will look at data sharing as well as regional aspects of the population debate. When it comes to data sharing, it's about infrastructure, it's about skills, it's about population trends and getting greater cooperation and coordination between state and federal governments. When we're talking about regional analysis, we need to know where are the jobs that are open and where are workers needed.
अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि नए प्रवासी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आकर कुछ ही हिस्सों में रहते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर हैं। कोई 2/3 नए प्रवासी राजधानी शहरों में ही बस जाते हैं, जैसे कि सिडनी, मेलबर्न या दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड में। और इसकी वजह से फेडरल सरकार जो इन प्रवासियों को आने देती है, यानी वीजा आदि देती है, और स्टेट और टेरिटरी सरकार जिन पर इन प्रवासियों के बसने पर भार आता है, तो इन दोनों में खासा तनाव बढ़ जाता है। और इसी तनाव की बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री एलन टच।
One of the key problems with our federation is that we control the primary population growth lever, being the migration settings, while the states and territories are largely responsible for the infrastructure and the service delivery. And what today is about and what a new framework is about is trying to marry those two things more closely together.
इंफ्रास्ट्रक्चर एक मुद्दा है जिस पर सभी बात कर रहे हैं और ये खासा राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। फेडरल विपक्ष नेता बिल शॉर्टन का कहना है कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करवाएंगे।
There's no point in bringing people into crowded cities if our infrastructure is not keeping up. So a big part of dealing with immigration is making sure that we've got the proper infrastructure to deal with it. It's only Labor who's got a proper plan for public transport in our national cities. It's only Labor who's got a proper plan to make sure our schools and our roads are properly funded. In terms of moving new Australians to the regions, we are up for that discussion because we think there are some regional communities who are keen to get more people. But it's just common sense, and we've got to make sure though that our infrastructure is coping with the people we bring in.
इमिग्रेशन मंत्री डेविड कोलमैन ने क्षेत्रीय स्थानों के लिए 19.4 मिलियन डॉलर की योजना का अनावरण किया है। इस योजना के तहत वो स्किल्ड प्रवासी जो ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय जगहों पर जाकर रहना चाहेंगे, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन को तेज़ी से आंका जाएगा। और ये जगह हैं नॉर्दर्न टेरिटरी, मध्य और उत्तरी पश्चिमी न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड में केन्स और विक्टोरिया में वार्मांबूल। लेकिन ट्रेजर्स के अनुसार इस मीटिंग में मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही रहा। क्वींसलैंड सरकार ने फेडरल सरकार पर सीधा वार किया कि सरकार न्यू क्रॉस रिवर रेल प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही। क्वींसलैंड ट्रेजर जैकी ट्रैट का कहना था,
दिस इज जस्ट
non-conversation unless the Commonwealth wants to get serious about funding infrastructure. And quite frankly, from Queensland's experience, we know that they're not interested in funding and financing infrastructure projects. So until they get serious on that front, I'm afraid that this is just a lot more words and not a lot of action.
उधर न्यू साउथ वेल्स सरकार फिलहाल वर्तमान फेडरल सरकार के साथ है राजनीतिक परिदृश्य में, लेकिन फिर भी उसके श्री फ्राइडनबर्ग, श्री टज और उनके साथियों के साथ अपने ही शिकंजे हैं। न्यू साउथ वेल्स ट्रेजर डोमिनिक पेरोटेट का कहना है कि उनकी सरकार को भी फेडरल सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा पैसा नहीं मिलता और उन्हें लगता है कि सरकार दूसरे राज्यों को और अधिक पैसा दे रही है जिन्हें शायद उतनी आवश्यकता नहीं, जैसे कि उनके उत्तर में उनका पड़ोसी राज्य।
It's the federal government that gets the benefit of immigration, but it's states like New South Wales that pay the bills. So what we would say on a per capita basis that New South Wales should get a fairer share when it comes to infrastructure investment. We're already seeing the taxpayers of New South Wales continue to support states like Queensland who don't recycle their assets, who don't have a reform agenda. And we think that when it comes to GST, or when it comes to infrastructure investment, states that reform should benefit, and states should be incentivized to embark on reform.
अब फेडरल सरकार के पास सीमित फंड्स हैं, राज्यों और टेरिटरीज की मांग भी जारी रहेगी, तो लगता है कि ये विवाद आते कुछ समय तक तो चलता ही रहेगा।
sbs.com.au/hindi पर जाएं और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाएं।